आज हम अभी भाई जी से सुनेंगे संबंधों में मधुरता। राजू भाई जी,
ओम शांति। आप सभी बहुत दूर से उड़ीसा की धरनी से बाबा के घर में पहुंचे हैं। यहाँ के शांत एकांत पवित्र वातावरण के बीच मैं समझता हूँ आप सबको बहुत अच्छी अनुभूतियाँ हो रही होंगी। अच्छा लग रहा है ना सबको? आप किसी अलग परिवार में नहीं, लेकिन अपने ही दैवी परिवार में आए हैं। ये भी अनुभव होता है ना, अपने परिवार में आए ना। वास्तव में आत्मा जब इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने आई तो आते ही उसको शरीर मिला, शरीर का संबंध मिला, और शरीर के लिए संबंध अलग मिले। तो संबंध तो इस सृष्टि के अनादि काल से चले आए हैं। कोई कहे मैं कोई संबंध किसी से नहीं रखता, हो सकता है ऐसा? संबंध तो कहीं ना कहीं होगा ही किसी से भी। सतयुग में स्वर्ग के अंदर भी देवी देवताओं के माँ बाप थे, परिवार थे, पति पत्नी बच्चे भी थे, वहां भी संबंध थे। और सतयुग से लेकर के इस सृष्टि चक्र के अंदर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और अभी हम सब कलयुग के अंत में आके पहुंच गए। अब यहां संबंधों में मधुरता की बात आ गई। संबंध थे ही सुख देने के लिए, सुख लेने के लिए। और जहां सुख मिलता है, सुख देते हैं, तो वहां पर अपने आप संबंधों में मधुरता रहती है। और जहां संबंधों में दुख देना शुरू कर देते हैं, वहां पर मधुरता खत्म हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे, मैं बचपन की बात याद करता हूं, जब हम अपने गांव में जाते थे तो पूरा गांव ही ऐसे लगता था जैसे अपना परिवार है। सब मिलने जुलने आएंगे, बातें करेंगे, बैठेंगे, हालचाल पूछेंगे, और कोई भी पर्व मिलजुल करके मनाते थे। आला गाते थे, होली खेलते थे, कोई भी त्योहार होता था तो इकट्ठा हो जाते थे सारे गांव वाले। आपस में एक दूसरे के दुख सुख में साथी बनते थे। गांव में एक अगर छप्पर उठाना होता था तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, ऐसा है ना? और आजकल तो पता नहीं कहाँ बिजी हो गए लोग, संबंध ही बिगड़ गए सब आपस में। आजकल जब जाते हैं तो देखते हैं दो भाई भी आपस में बात नहीं करते हैं। सगे भाई लौकिक में सगे हैं, लेकिन उनका मुंह अलग, उनका मुंह अलग, उनका घर अलग, उनका घर अलग। झगड़ा भाई क्यों हो गया, क्यों हो गया? थोड़ी सी जमीन के ऊपर झगड़ा हो गया। वो जो बैल गाय बांधने के लिए खूंटा लगाते हैं ना, उस खूंटे के ऊपर झगड़ा हो गया। इतनी अंदर की वृत्तियों में स्वार्थ भावना आ गई, संबंधों में स्वार्थ अगर आ गया, संबंधों में अगर मैंपन आ गया, बॉडी कॉन्शियस आ गया, ईगो आ गया, तो क्या हुआ? टकराव शुरू हो गया। जो स्नेह था, संबंधों में प्यार था, मधुरता थी, वो खत्म हो गई। उसके कारण ही आज हर घर में अलग अलग चूल्हे जलने लगे। नहीं तो पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक ही मुखिया होता था घर का, दो चार बहुए, दो चार भाई, सब साथ में बच्चे पढ़ते थे, खाते थे, रहते थे, खेलते थे। और आज तो कितना संबंधों में अंतर आ गया, भेद हो गया, अपने अपने ही नहीं रहे, पराये लगने लगे। कारण तो समझते होंगे आप, समझते हैं क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ा एक कारण ध्यान देना, जिस पर मैं ध्यान खिंचवा रहा हूं, आज आप सबको पहला लेसन मिला, फर्स्ट लेसन सुना सुबह सुबह। आप कौन है? आत्मा है। आत्मा क्या है? मालिक है। किसकी? कर्म इंद्रियों की, शरीर की। शरीर में जो इंद्रियां हैं, आत्मा की तीन मुख्य शक्तियां बताई गई, मन बुद्धि संस्कार, और उसके साथ ये जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक मुख कान हाथ, फिर और सब इंद्रियां हैं, उन सब के आत्मा अधीन हो गई। मालिक जो था, राजा जो था, वो प्रजा के अधीन हो गया। अधीनता की निशानी क्या होती? परवश स्थिति। परवश स्थिति होने के कारण, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा ये संबंध दूर क्यों हो गए। परिस्थिति के, परवश स्थिति के कारण आत्मा ये समझती है कि मैं क्या करूं, मेरी आंख धोखा देती है, मेरा मुख धोखा दे गया, मैं चाहता नहीं था लेकिन ये सुन लिया, ये बोल दिया, ये देख लिया, ये कर लिया। जो परवश स्थिति है कि मैं चाहता नहीं था मेरे से हो गया, यही वास्तव में संबंधों में दूरी का मूल कारण है। इस कारण का निवारण केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही किया जा सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान से ही किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा पहले अपने आप पर शासन करती है। आज जितने संबंध दूर हो रहे हैं उसका एक मूल कारण है इस जबान पर लोगों की लगाम नहीं है। जो आता है बोल देता है, जब आता है बोल देता है, क्या बोल रहा है उसको ध्यान ही नहीं है, कहता है मैं चाहता नहीं था मेरे से निकल गया। अब एक बार निकल गया, कहते एक बार तीर निकल गया कमान से तो कहीं तो घायल करेगा ही, और आपने मान लो उसकी सामने वाले की परिस्थिति नहीं देखी, उसकी स्थिति नहीं देखी और जो आया वो बोल दिया, तो आपके समीप आएगा, उसे संबंध अच्छा रहेगा, कहेगा इसके सामने जब जाओ कुछ न कुछ उल्टा ही मेरे लिए बोलता है, उल्टा ही सोचता है, ये मेरे को ही दुख देता रहता है, ये मुझे परेशान करता रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को बार बार कोई बात कहे, टोका टोकी जिसको कहते हैं ना गांव में, टोकते रहे तुम ऐसा क्यों करता, तुम ऐसे क्यों करता, तुझको ये नहीं करना चाहिए, तो सामने वाला सुनते सुनते वो किनारा कर लेता है, दूर हो जाता है। तो आप सब एक बात का ध्यान रखना, अगर सचमुच संबंधों का सुख लेना है, संबंधों का सुख, क्योंकि संबंध ही सुख के लिए, आज वो संबंध बदल करके बंधन बन गए, संबंध कहां रहे। आज माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा समझता है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, माँ बाप समझते ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया, संबंध है। लेकिन संबंध दूरी क्यों हो गई? दूरी ये हो गई कि हम संबंध की रीति से फर्ज पालन करने की बजाय अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। क्या अधिकार रखते हैं? कि जैसा मैं सोचती हूं, जैसा मैं कहती हूं, जैसा मैंने सोचा है ऐसा इसको करना चाहिए। आपको मान लो चार बच्चे हैं, चारों बच्चों की आपने नेचर समझी नहीं, उनकी विशेषताओं पर आपने ध्यान नहीं दिया, और आप समझते हो ये मेरे बच्चे हैं, मेरापन मोह ममता वाला मेरे हैं, मैं इनको पढ़ा लिखा करके ये बनाना चाहती हूं। लेकिन चारों को आपने परखा नहीं और चारों को आप एक ही डंडे से हांकना चाहो, एक ही रास्ते पर लाना चाहेंगे, क्योंकि चारों की नेचर अलग है, चारों का स्वभाव अलग है, उनकी उनकी क्षमता अलग है, उनकी बुद्धि की डेवलपमेंट अलग है, सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। ये ईश्वरीय ज्ञान जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया गया, दिया जा रहा है, इस नाटक के अंदर जैसे ये शरीर फेस चेहरा एक का दूसरे से नहीं मिलता, वैरायटी है, जितने लोग हैं जितने चेहरे हैं वो सब अलग अलग है, ऐसे ही जितनी आत्माएं हैं यहां पर जो इस नाटक में खेल खेल रही हैं, वो सब आत्माएं अपना अपना खेल खेल रही, अपना अपना उनका संस्कार है, अपना उनका स्वभाव है, अपनी उनकी आदतें हैं, नेचर है, और उसी प्रमाण वो डेवलप कर सकती हैं अगर उनको सहयोग दिया जाए तो। चार बच्चे हैं, एक कहेगा मैं डॉक्टर बनूं, दूसरा सोचेगा नहीं मेरा ये क्षेत्र नहीं है मैं तो बिजनेस करूंगा, तीसरा सोचता है नहीं मैं प्लानिंग बुद्धि हूं इंजीनियर बन जाऊंगा, और चौथा है जो कहता नहीं मेरे को तो खेती बाड़ी ही करनी है। चार हैं और चारों की आदत, चारों की सोच, चारों का अंदर संस्कार अपना अपना है, और माँ बाप अधिकार अगर रखे हैं कि नहीं चारों को मुझे एक ही जगह पर रखना है तो रहेंगे, संबंध ठीक रहेंगे। क्या करना पड़ेगा संबंधों को ठीक रखने के लिए? ज्ञान माना समझ, जो ईश्वरीय ज्ञान परमात्मा ने हम बच्चों को दिया है उससे हम समझते हैं, और समझ करके जो जिसकी विशेषताएं हैं, कहते हैं एक की विशेषता दूसरे की विशेषता से नहीं मिलती, एक की बुद्धि दूसरे की बुद्धि से नहीं मिलती, हम समझें जैसा मैं करता हूं ऐसा मेरे साथी करें, जो मैं कर रहा हूं वैसा मेरे सब जिनको मैंने पालना दी बड़ा किया वो भी करें, करेंगे? उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनके अंदर वो योग्यता नहीं है, उनकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं है, फिर हम उन पर अधिकार रखे वो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम गुस्सा करेंगे, हमें गुस्सा आएगा, आप शब्द बोलेंगे उनके प्रति, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उल्टा इधर उधर बोल देंगे। अगर किसी के प्रति भी आपकी जबान पर कंट्रोल नहीं है तो संबंध कभी मधुर नहीं हो सकते। इसलिए इस विद्यालय से एक संकल्प करने करके जाना, आज हमारा हजारों का परिवार है यहां पर परमानेंट समर्पित, कभी किसी से टकराव नहीं होता, कभी किसी से मनमुटाव नहीं होता, कभी कोई एक दूसरे से बात न करे ऐसा नहीं होता। इतनी बड़ी कारोबार सब मिलजुल करके अपना समझ करके कर रहे हैं, सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, दुख सुख में भी साथ देते हैं, कभी किसी को बीमारी आ गई, कभी कोई को जरूरत कोई पड़ गई आवश्यकता, मदद करते हैं। ऐसा परिवार जो भगवान ने बनाया, ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार, जिसके अंदर मोह नहीं है, ममता नहीं है, जेलसी नहीं है, जिसके अंदर एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावनाएं हैं, जिसके अंदर एक दूसरे की विशेषताओं का पता है। हमारी दादियों ने इतने बड़े परिवार को एक सूत्र में बांधा और सबको ये अनुभव कराया, सबके मुख से निकलता है ये मेरा बाबा है, ये मेरी दादी है। लौकिक में अगर अपनी होती भी, लौकिक जन्म देने वाली दादी भी होगी तो सब उसको ये नहीं कहेंगे मेरी है, कहेंगे ये पक्षपात करती है, इसकी है इसकी नहीं है, ऐसा होता है ना। हैं चार बच्चे लेकिन चारों उसको अपनी दादी, मेरी दादी ये नहीं कहेंगे, मेरी माँ ये नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं इससे इसका ज्यादा प्यार है, मेरे से कम प्यार है। कारण क्या हुआ? उसने उसी तरह से उसको, जिस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, जिस तरह से उससे बात करनी चाहिए, जिस तरह से उसको सम्मान देना चाहिए, अगर उसने नहीं दिया तो वो कभी अपना महसूस नहीं करेगा। हमारी दादियों ने हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में सबको उसी नजर से देखा, इस आत्मा की क्या विशेषता है, सिर्फ देखा नहीं उस विशेषता का वर्णन किया, सामने भले न किया लेकिन किसी के सामने अगर कर दिया, ये बाबा का बच्चा बहुत अच्छा है, इसके अंदर कितना यज्ञ के प्रति प्यार है, कितना बड़ों का आदर सत्कार करता है, कितना दिल से ये सेवा करता है, कितनी एक्यूरेट सेवा करता है। विशेषताएं देखी, एक दूसरे के आगे वर्णन की, और वर्णन करने के बाद जिसकी विशेषता वर्णन की अगर उसके कान तक पहुंच गई कि बड़ों ने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला, तो उनका स्नेह, उनके प्रति प्यार, उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा या घटेगा? नेचुरल बढ़ जाएगा। आप अपने परिवार के सदस्यों को, पांच लोग हैं, पांचों को अगर एक एक की अलग अलग विशेषता देखो, सबकी एक नहीं है, सबकी अलग है, और वो नोट करके एक दूसरे के आगे वर्णन करो। संबंधों में मधुरता लाने की विधि मैं बता रहा हूं आपको। कभी भी किसी को अपना बनाना हो, उसकी विशेषताएं किसी दूसरे के आगे वर्णन करो। ये बच्चा जो है, ये जो बहन है, ये जो बहू है, इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये विशेषता है, ये जब से आई है इसने घर को मंदिर बना दिया है, जब से आई है तब से कितना घर को साफ स्वच्छ रखती है, कितना सबका ध्यान रखती है। हैं कमियां भी होंगी, लेकिन जो उसकी विशेषता है, कमियों का वर्णन करने के बजाय यदि आप किसी के सामने उसकी विशेषता का वर्णन कर दो, तो उसके मन में अगर गलत फहमी भी कुछ आपके लिए होगी तो वो दूर हो जाएगी, झगड़ा नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। और यही विधि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपनाई गई। आज हम कहते हैं हमारा इतना बड़ा बेहद का परिवार है, जिसमें 40,000 से भी अधिक बहनें हैं, समर्पित हैं, भाई हैं, इतने सब समर्पित होकर के एक परिवार की रीति से रहते हैं। कभी किसी को ये फीलिंग नहीं आता कि मैंने कुछ छोड़ा है, कोई परिवार में छोड़ करके इस परिवार में आया हूं। इस परिवार में आकर के भी कितना दिल से प्यार से एक दूसरे को देखते हैं, सम्मान देते हैं, सत्कार से बात करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। ये सब आगे बढ़े। नहीं तो क्या होता है परिवार में, अगर किसी ने एक की महिमा कर दी, माँ बाप के सामने किसी एक की महिमा हो गई, कहेगा इसको मैंने इतना योग्य बनाया, ये इसकी क्यों महिमा करता, मेरी होनी चाहिए, मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसको सिखाया, महिमा इसकी हो रही, मेरे को लोग जानते नहीं, मुझे कोई पहचानते नहीं। लेकिन दादियों ने, हमारे बड़ों ने क्या कहा, इसकी महिमा माना मेरी महिमा, इसकी महिमा माना बाबा की महिमा, और इसलिए उन्होंने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी के लिए ये नहीं सोचा कि इसकी महिमा क्यों हो रही, मेरी महिमा क्यों नहीं। तो अगर हम बड़ी दिल वाले बने, बड़ी दिल, परिवार में मित्रता भाव के लिए सदा एक भावना रखना कि हमें बड़ी दिल से हर एक को सत्कार देना है, हर एक को सम्मान देना है, हर एक को उसी नजर से देखना है, ये सब विशेष आत्माएं मेरे घर में आई हैं, जो भी आई हैं, जैसी भी हैं, कहां से आ गई, किसी किसको तो कोई अकल ही नहीं है, ये तो कुछ सीख के ही नहीं आई है, आते ही घर में आपके विचारों का प्रभाव उस आत्मा के मन मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर रहा है, बोल नहीं रहे हो आप, अगर गलत विचार भी आप कर रहे हो उसके प्रति, तो क्या उसको टच नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा आपकी भावनाओं का? वहां पर उलझन पैदा होती है, वहां टकराव पैदा होता है, आप उसके लिए एक सोचते हो, 10 सोचने लगता है। पहले सोच को बदलो। हमारा ये विद्यालय जो आत्मा का ज्ञान दे रहा है, उसमें पहला एक नियम रखा गया है कि अपनी चिंतन धारा को बदल लो, आपका जीवन बदल जाएगा। चिंतन धारा, आप क्या सोच रहे हो मेरे प्रति, बोल नहीं रहे हो, सोच रहे हो, उसके भी वाइब्रेशंस जाते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति का, अभी मैं एक जगह गया था, एक बड़े आदमी ने अपने घर में बहुत बहुत बड़ा कुत्ता पाला हुआ था। उस कुत्ता मालिक का इतना वफादार, इतना आज्ञाकारी, जो उसकी पूरी संभाल करता था। लेकिन अगर कोई बाहर का अनजान व्यक्ति आ जाए तो उसको अंदर घुसने नहीं देता था। मालिक बहुत प्यार करता था, कुत्ता भी मालिक का बहुत वफादार था। लेकिन एक बार उसका कोई अच्छा मित्र मिलने के लिए उससे आया तो भौंकने के साथ साथ उसने उसको काट लिया। जब उसको काट लिया तो मालिक को गुस्सा आ गया उस कुत्ते के प्रति कि इससे तो इसको मार दिया जाए। अब उसके विचार चल ही रहे थे मार दिया जाए मार दिया जाए। मालिक को प्यार करने वाला कुत्ता वहां से दौड़ करके आया और मालिक को ही काट लिया। कहता मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ हाथ नहीं उठाया, कुछ ऐसा साधन नहीं मारा कि इसको मार दिया जाए। सिर्फ मेरे विचार उसके प्रति गंदे विचार बने, अशुद्ध विचार आए, और उसको कैसे पता चला कि मेरा मालिक मेरे से विरोध करना चाहता, उसने मेरे को ही काट लिया। ये विचारों की तरंगें जो हैं, ये बहुत अधिक लोगों के मन को डिस्टर्ब करती हैं, मन को समीप भी ले आती हैं, मन को दूर भी कर देती हैं। हम सभी विचार ये नहीं करते हैं कि हम सोच रहे हैं इसको क्या पता है, जो हम सोच रहे हैं सामने वाले को क्या पता है, उसको पता हो या ना हो। लेकिन आप अगर गलत किसी व्यक्ति के प्रति अंदर से सोच रहे हैं, आपकी भावनाएं अगर अशुद्ध हैं, नकारात्मक हैं, तो उन भावनाओं के कारण वो आत्मा आपसे समीप नहीं आएगी। इसलिए बहुत ध्यान देना, बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सबके आभा मंडल को परिवर्तन किया। शरीर अलग है और शरीर के साथ क्या है, एक शुद्ध विचारों का ओरा, आभा मंडल। इस बात पर थोड़ा सा गौर करना, आप लोग अभी तो क्या ज्ञान को समझ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन पढ़ा है, शास्त्रों में भी ये बात पढ़ी है, चित्रों में भी देखी है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं, धर्म आत्माएं होती हैं, उनके जब चित्र बनाते हैं तो चित्र के शरीर के साथ साथ, फेस के साथ साथ एक लाइट दिखाते हैं चारों तरफ, वो क्या है, ओरा है, उनके विचारों का ओरा है। अगर आपका ओरा अच्छा है, आपके विचार बड़े शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सबके कल्याण के हैं, सबके भलाई का आप सोच रहे हो, सबकी उन्नति का सोच रहे हो, भले बोल नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो अभी प्रैक्टिकल, लेकिन जो विचारों की तरंगें निकल रही हैं उनसे लोगों के मन को बहुत प्रभाव पड़ रहा है, वो आपके समीप आना चाहती हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं, वो आपसे बात करना चाहती हैं। इसलिए सबसे पहला अटेंशन अगर आप देंगे कि मुझे अपने विचारधाराओं पर ध्यान देना है, इनको शुद्ध बनाना, इनको सबके प्रति सकारात्मक बनाना, कोई कैसा भी है, हमारे अनुसार तो सब नहीं हो सकते, अगर मैं उनकी कमियों को, उनकी कमजोरियों को, उनके अवगुणों को देखता रहूंगा तो हमारे विचार अशुद्ध हो जाएंगे, और जहां अशुद्ध विचारधाराएं हैं वहां कभी भी संबंधों में मधुरता नहीं रह सकती। पहला ध्यान ये देना है, अगर संबंध मधुर बनाने हैं, संबंध को स्नेही और सहयोगी बनाना है, संबंधों को समीप लाना है, उनसे सुख की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहला ध्यान अपने चिंतन की धारा को बदल दो। बहुत आत्माएं अच्छी हैं, ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये हमारे घर में आई है, बहुत कुछ समीप की आत्मा है, बहुत विशेषताएं लेकर के आई है। ऐसे विचार तो किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते कि कमियों को ही सोचते रहेंगे, कहां से आ गया ये, तो पता नहीं कैसे आ गया, कोई तो कर्मों का हिसाब किताब है तब तो आपके पास आया है। कोई किसी के घर में अगर आता है, शादी करके कोई नई बहू आती है या फिर बेटा आता है, कोई भी आता है, कुछ तो पिछले जन्मों का खाता है, तब तो मेरे पास आया है, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से उसको देखना, उसके पर शुभ चिंतन करना, उसके पर बहुत अच्छे अच्छे विचार करना, वो संबंध बहुत मधुर बन जाएंगे। और अगर उसके पर सोचे कहाँ से आ गया इतना सारा संबंध लेकर के, इतने सारे संस्कार लेकर के, कितना लोगों को दुख दे रहा है, कितना परेशान कर रहा है, कैसा कैसा है, तो क्या होगा, आपके विचारों का प्रभाव उस व्यक्ति को आपसे दूर कर देगा, संबंधों का सुख नहीं ले सकेंगे। इसलिए संबंधों को सुखदायी बनाने के लिए, संबंधों में मधुरता लाने के लिए हम सबको अपने विचारों पर ध्यान देना है। और दूसरा, बोल सदा कंट्रोल में रखने हैं, बोल मधुर हो, सम्मानजनक हो। हर आत्मा की योग्यता और विशेषता के अनुसार हमारे मुख से बोल निकले, नहीं तो बोल बड़े संबंधों में दूरी बढ़ा देते हैं। सभी ध्यान देना, जो कुछ हम किसी के लिए बोलते हैं उसके लिए वरदान या श्राप बन सकता है। ऐसे नहीं हमने तो बोल दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। कई माताएं अपने बच्चों के लिए बोले, कहां से पैदा हो गया, कैसा है, वो आपने श्राप उसको दे दिया। इसलिए बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प आया है, अपना भाग्य लेकर के आया है, इसको अच्छे से अच्छा पाठ यहाँ बजाना है। और उसके प्रति इतना अच्छे मधुर बोल, सम्मानजनक बोल। कहते हैं सम्मान जो है वो मांगने से नहीं मिलता, कैसे मिलता है, देने से मिलता है। कई चीजें देने से मिलती हैं, स्नेह दोगे तो स्नेह मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, और मांगने से नहीं मिलेगा। इसलिए संबंध हमारे सुखदायी रहे, संबंध हमारे मधुर रहे, संबंधों में कभी हमारे टकराव पैदा न हो, मन मुटाव न हो, दूरी न बढ़े, उसके लिए इस आध्यात्मिक शक्ति को पहचानो और खुद के मालिक बन जाओ। आज हमारे महावाक्य की जो बाबा ने हमें सुनाए हैं सवेरे के क्लास में, उसमें कहा है बच्चे, इन पांचों विकारों के कारण आज आत्मा की ये गति हुई है, जो कितने दुख हैं, कितने अशांति हैं, सुख शांति का घड़ा ही सूख गया। काम वासा, काम विकार, और वो इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती हैं, कामनाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है। बाबा ने आज उसको शब्द दिया, भौं भौं करता है, गुस्सा आ गया तो क्या करेगा, जोर जोर बोलेगा, आवाज करेगा। लोगों का अगर एक दूसरे से कुछ पूर्ति नहीं हुई, सहयोग नहीं मिला, स्वार्थ भावना पूर्ति नहीं हुई, तो वहां टकराव पैदा हो जाएगा। संबंधों में कितना स्वार्थ है, ऐसे आपके हजार मित्र बन जाएं, जब तक आपके पास पैसा है, आप उनको खिलाते पिलाते सब चीजें देते हो, तब तक आपके बहुत दोस्त हैं। और जिस दिन कमी पड़ गई, कुछ नहीं रहा, और उस दिन सब आपसे किनारा करने लगते हैं, छोड़ो इसके साथ हो जाएगा। स्वार्थ के संबंध है, लोभ वृत्ति के कारण संबंध लोग बना रहे हैं, और मोह समझते मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, और उस मेरे मेरे ने ही लोगों को परेशान किया हुआ है। मेरेपन की कहानी कभी कभी मैं किसी को सुनाता हूं। एक सेठ जी थे, बहुत बहुत प्यार था परिवार से, खुद बेचारे एक छोटी सी कुटिया में एक छोटी सी दुकान लेकर के बैठे थे। उनकी भावनाएं परिवार के प्रति इतनी थी कि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा भवन बनाऊं। कमाते रहे, पैसे को बचाते रहे, खुद खाएं न खाएं, पहने न पहने, सब कुछ सहन करके, बेगरी पार्ट जैसे जीवन जी करके पैसा इकट्ठा करने लगे। और इकट्ठा करते करते उन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी करना शुरू कर दिया। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, चार पांच मंजिल की अच्छी सी बिल्डिंग बनाई, और रोज वहां जा करके देखते थे, बजा रहा है क्या गीत, रोज देखते थे तो देखते दिखते ये मेरे बच्चे का है, ये मेरे बच्चे के बच्चे का है, ये मेरे पोते का है, ये मेरे उसका है, हर कमरे पर रोज नाम लिख के आ जाते थे, ये उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, और खुश होते रहते थे। मैंने कितनी मेहनत करके अपने पूरे परिवार के लिए इतना अच्छा भवन बनवाया। एक दिन ऐसे बैठे थे, कुछ गड़बड़ हो गई लाइट की, शॉर्ट सर्किट में वो बिजली बिल्डिंग जो है ना जलने लगी, उसमें आग लग गई। तो पड़ोसियों को बच्चों को पता था कि इस बूढ़े बाबा को इस मकान से बहुत प्यार है, रोज आके देखता है, अभी रहता कोई नहीं है, बन के ही तैयार हुआ है। तो दौड़े दौड़े गए, बाबूजी बाबूजी आपकी बिल्डिंग में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। उसने जाके देखा, देखते हुए बेहोश हो गया, तड़फने लगा, हाय मेरे जीवन भर की कमाई, मैंने इतनी मेहनत करके, इतना चोरी ठगी करके, बचत करके ये बिल्डिंग बनाई, अभी ये जल रही, अब मैं जी के क्या करूंगा। तड़फने लगा, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया सब। तो उसका बच्चा बड़ा समझदार था, वो दौड़ा दौड़ा आया, बाबूजी क्या हुआ, बाबूजी क्या बताएं, बाबूजी तो रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, परेशान हैं, बेहोश। कहते हैं अभी मुझे नहीं जीना, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी की कमाई इस बिल्डिंग के अंदर जल रही है, अब मैं क्या करूंगा। तो बच्चा कहता है, बाबूजी एक बात बताऊं, मैं भूल गया बताना आपको, कुछ समय पहले मुझे पैसे की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने ये बिल्डिंग तो बेच दी थी, ये अपनी नहीं है, आपको बताना मैं भूल गया, पैसे की बहुत जरूरत थी, मैंने बेच दिया, ये अपनी नहीं है। अब बाबूजी के विचारों में परिवर्तन आई, अपनी नहीं है, बस बीपी ठीक हो गया, जलने दो कोई बात, अपनी नहीं है ना, पांच मिनट पहले अपनी थी, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा है, वो मेरा जल रहा है, तड़फ रहे हैं, और जो विचारधाराओं में चेंज आ गई, परिवर्तन क्या आ गया, मेरी नहीं है। परिवर्तन आते ही उनका यार शरीर की सारी इंद्रियां ठीक हो गई, बीपी भी ठीक हो गया, शुगर भी ठीक हो गया, नॉर्मल लाइफ पोजीशन, मेरी नहीं है, जलने दो। आप सब क्या समझ रहे हो, आज के संसार में दुख का कारण क्या है, मेरा, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मेरे ये संबंधी मेरा कहना नहीं मानते, बेचारा सारा दिन तनाव में रहता। और अगर संबंध ऐसे बना लेता है अधिकार वाले, एक छोटे से अपने ही ईश्वरी परिवार की बात बताता हूं, एक ज्ञानी परिवार इस विद्यालय में आता था, एक छोटी सी पाठशाला बनाई थी, रियल घटना, उसके दो बेटे और एक बेटी, घर में गीता पाठशाला, मां बाप पांच जने थे सदस्य। बड़े बेटे की उसने शादी किया और शादी करके वो अपना शहर में चला गया गांव से, वहां अपना बिजनेस करने लगा, अपना परिवार बसाया, अपना घर बना लिया। छोटी बेटी, बेटी जो छोटी थी उसकी दिल हुई मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं, तो मां बाप ने उसको सेंटर पर रख दिया। अब बीच वाला बेटा जो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते किसी लड़की से उसका प्यार हो गया, सच्ची घटना है ये। मां बाप को पता चला वो लड़की थोड़ी छोटी जाति की है, हमारा कुल बड़ा है, हमारा नाम बहुत है। अब उसने उस बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाया, तेरी मैं शादी जरूर कराऊंगा लेकिन तुम तो इससे नहीं करनी है। अब वो कहे मुझे इसी से करनी है, कुछ भी हो जाए इसी से करनी। अब मां बाप उसको बहुत प्रेशर करे, नहीं मेरी नाक कट जाएगी, मेरे को लोग क्या कहेंगे, मेरे समाज में क्या होगा, तुम ऐसा नहीं कर, तेरे को मैं कायदे से सब कुछ कर दूंगा। लेकिन बच्चा नहीं माना, और जब उसके ऊपर बहुत बंधन मां बाप डालने लगे, मिलने नहीं दें, जाने नहीं दें, कॉलेज उसका बंद करा दिया, तो उसने एक दिन लटक गया, चला गया संसार। अब उसके जाने के बाद का हालत हुआ, जो घर में पाठशाला चल रही थी, माँ बाप ने जो इतना प्रेशर उस पर किया, उस घर के वातावरण में इतना जबरदस्त झटका लगा, पिताजी को तो हार्ट अटैक आ गया, वो थोड़े दिन में ही चले गए। इतना शौक लगा अंदर से, और माताजी को पैरालाइज हुआ थोड़े दिन में, सोचने लगी, रोना धोना, दुखी परेशान। पिताजी पहले गए, माताजी थोड़ा सहन करके और भोग करके थोड़े दिन के बाद चली गई। अब बेटी जो थी वो सेंटर से घर संभालने के लिए आई, और वो बेटा जो लखनऊ में उधर यूपी में था वो तो आया ही नहीं वापस, कहता मैं ठीक हूं तुम जानो तुम्हारा काम। सारा घर क्या बन गया। अब बेटी की जिंदगी अभी मैं देखता हूं, कभी जाता हूं, दुकान संभाले, घर संभाले, कुछ नहीं, कोई नहीं घर में, कोई पाठशाला नहीं। ये एक मोह, एक रग कलयुग के अंदर व्यक्ति जो अपना समझ करके किसी परिवार के सदस्य पर अधिकार रखता है, उस अधिकार के कारण ऐसी समाज की गति है, कलयुग है ना ये। इसलिए इस विद्यालय में हम सबको ये सिखाया जाता, किसी भी संबंध को मैं के कारण, मोह के कारण अपना समझ करके अधिकार नहीं रखो, फर्ज जरूर पालन करो। फर्ज है समझाना, फर्ज है। इस विद्यालय के अंदर भगवान ने हम सबको सब कुछ बता दिया और बता करके कहा, बच्चे अभी तुम्हारे लिए ये रास्ता है। मुझे कहते हैं, भगवान को कहते हैं दुख हरता सुख करता, लेकिन वो कहता है न मैं दुख देता हूं न मैं सुख देता हूं। अगर मैं किसी को सुख दूं और किसी को दुख, तो लोग कहेंगे भगवान भी कोई हेरा फेरी करता है। कहता है मैं देता नहीं हूं, लेकिन मैं नॉलेजफुल हूं, ज्ञान का सागर हूं, जानी जानहार हूं, इसलिए बच्चों को रास्ता बताता हूं, तुम इस रास्ते पर चलेगा तो सुखी रहेगा, अगर इस रास्ते पर नहीं चलेगा, इस पर जाएगा तो दुखी हो जाएगा। आप परिवार के सभी सदस्यों का फर्ज कहता है कि आप उन्हें सही मार्ग दिखाओ, लेकिन अधिकार से जबरदस्ती उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। उसके पिछले जन्मों के कुछ कर्म हो सकते हैं, हिसाब किताब हो सकते हैं, अपने को दुखी करके अपने को क्यों परेशान कर रहे हैं। कई माता पिता सारा टाइम रोते रहते हैं, मेरा बच्चा जब से कॉलेज में गया उसको ऐसा संग लग गया, वो शराब पीना सीख गया, वो ऐसा करने लगा, वैसा करने लगा, आप कोई मुझे युक्ति बताओ। माताएं तो आके कितना रोती हैं आकर के, अब युक्ति क्या निकालेंगे, क्या बताएंगे। पहले तो आपने उनको सही मार्ग नहीं दिखाया, पहले खुद जैसा कर्म किएंगे वैसा ही लोग करेंगे, पहले खुद के संकल्पों पर ध्यान नहीं दिया, खुद के कर्मों पर ध्यान नहीं दिया, और फिर दूसरे को आप कंट्रोल करना चाहते हो। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को सही ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, और समझ को जो प्रयोग करता है वो सुखी हो जाता है, और जो समझ का प्रयोग नहीं करता दूसरे रास्ते पर जाता है वो दुखी हो जाता है। आप सबका भी फर्ज करता प्रवृत्ति में जो भी है, माता पिता जो कर्म करेंगे, एक स्लोगन हमारा है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, और दूसरा अभी का स्लोगन ये है, जैसी चिंतन धारा मेरी होगी, जैसी मेरी वृत्तियां होंगी, वैसा ही वायुमंडल बनेगा। इसलिए ध्यान देना, अगर घर को मंदिर बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, संबंधों को साथ लेकर के चलना है, घर को आश्रम बनाना है, तो ध्यान देना कभी भी घर के वातावरण में नेगेटिव को स्थान नहीं देना है, नकारात्मक संकल्पों को स्थान न दे करके बहुत पॉजिटिव, बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करो। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता होती है स्वच्छता, अगर स्वच्छता नहीं है तो स्थान मंदिर नहीं कहलाता। और भगवान कह रहे हैं मेरे बच्चों का हर घर मंदिर होना चाहिए, मंदिर एक अलग से स्थान न बने लेकिन घर घर मंदिर बन जाए, उसके लिए हम सबके विचारों की स्वच्छता चाहिए, विचारों में जरा गंदगी न हो किसी के प्रति, ये है ही ऐसे। कई बार क्या सोचते, ये तो बदलने वाले नहीं है, ये तो सुधरने वाले नहीं है। ये संकल्प अस्वच्छ संकल्प है। मन को कभी भी गंदे विचारों से भरना नहीं है, कमजोर विचारों से नहीं भरना। मन की स्वच्छता का प्रभाव घर के स्थान की स्वच्छता पर पड़ता है। अगर किसी का मन शुद्ध है तो उसका तन शुद्ध होगा, उसके वस्त्र शुद्ध होंगे, उसका स्थान शुद्ध होगा, उसका घर शुद्ध होगा। इसलिए पहले अपने विचारों को शुद्ध स्वच्छ बनाने की जरूरत है, और वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान से बन सकती है। जब हरेक आत्मा की आप विशेषता देखेंगे, विशेषताओं को देख करके उसके प्रति सम्मानजनक शब्द बोलेंगे, उसके प्रति भावनाएं अच्छी रखेंगे, उसको आगे बढ़ाने के शुभ संकल्प अंदर चलेंगे, तब आपकी भावनाओं के आधार से वो आत्माएं आपके समीप आएंगी और घर का वातावरण बहुत सात्विक शुद्ध पवित्र बनता जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा। उस घर में आने वाला हर व्यक्ति महसूस करेगा कि बहुत अच्छे स्थान पर हम आए हैं, यहां से बहुत शांति मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत सुख सगुन मिला। ऐसे लगता है ये तो मेरा अपना घर है। यह आश्रम सबको क्यों आकर्षित कर रहे हैं, देश विदेश के हजारों भाई बहने यहां करके इतने प्रभावित होके इतने खुश होके जाते हैं, मैं अपने घर में आया, कोई बंधन नहीं है, कोई कहीं तालाचा भी नहीं है, सब घूम रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब अपनेपन का अनुभव कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सब गुणग्राही हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं। इससे लोग खींच करके चुंबक की तरह आते हैं और आकर के सेवा में सहयोगी बन जाते हैं। तो आप सब अपने परिवार को एक सुंदर आश्रम बनाओ, घर को मंदिर बना दो, हर एक इतना मित्रवत व्यवहार करे। और उसके लिए आज बाबा का एक बड़ा अच्छा शब्द था, अपने स्वभाव को बड़ा इजी बनाओ, सरल बनाओ, टाइट स्वभाव नहीं, गुस्से की नेचर वाला नहीं। कोई आपसे सरलता से अपनी बात कहे और सुन सको आप। अगर कोई सुनने की शक्ति नहीं रखता तो कोई सुनाना भी नहीं चाहता। इसलिए ध्यान देना, जो घर के मुखिया हैं, बड़े हैं, माँ है, बाप है, दादा है, कोई भी है, उनको अपनी नेचर को इतना सरल इजी बनाना है जो हर एक आपके पास आकर के अपने मन को हल्का कर सके। वो समझे कि इनके पास जाएंगे तो इनके पास जाते ही हमें हल मिलेगा, मदद मिलेगी, उमंग मिलेगा, इसलिए मैं इनको सुना दूं। अगर आपको सुनाया और आपने उसको बहुत सरलता से सही मार्ग बता दिया, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा, वो आपको एक बार नहीं हजार बार आपके पास आएगा, आपका संबंध उसके साथ बहुत मित्रवत हो जाएगा। और आते ही तुम तो सदा ही ऐसे करता है, तुम तो है ही ऐसा, डांट दिया, गुस्सा कर लिया, तो एक बार तो आएगा, दूसरी बार कहेगा इनसे क्यों किनारा करो, दूर रहो, ये तो सदा ही गुस्से में बात करते हैं। हमारी दादियों ने अपनी नेचर ऐसी बनाई, कोई भी हो, कैसा भी हो, इतनी बड़ी पद पर, इतनी बड़ी पोस्ट पर, इतनी बिजी होते हुए भी, मैं आपको बताऊं, मेरा संबंध जो बड़ों से रहा है, अगर मैं गेट पर भी ऐसे चला गया, अरे अरे राजू इधर आओ, इधर आओ, तुम कोई काम से आया होगा ना, कुछ काम है क्या, बिजी है, मैं देख रहा हूं 10 लोग बैठे मिलने वाले, उन्होंने ये क्यों, वो ये नहीं कहा तू अभी क्यों आ गया, जाओ 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 यहां से। अगर एक बार कट कर दें, एक बार किसी के सम्मान को ठेस पहुंच जाए, तो दूसरी बार कहीं छोड़ो नहीं जाते, क्यों जाएंगे, कितने भी काम हो अटक जाएं, तभी भी हम बड़ों के पास नहीं जाएंगे। और अगर हम गए और उन्होंने बहुत प्यार से, रे रे ये आया, इसका बहुत जरूरी काम होगा, तुम रुक जाओ मैं इससे बात कर लेती हूं, इतनी सरल नेचर, इतनी मिलनसार नेचर, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति कितनी भी छोटी से छोटे कार्य में लगी हुई, अगर उनके सामने गई तो मुस्करा करके प्यार से कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ सहयोग चाहिए, कुछ सेल्वेशन चाहिए, कुछ कहना है, यह सरल नेचर, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात को। इस सरल नेचर के आधार से उन सब ने हमारे दिलों को जीता, बड़ों ने, और बड़ों ने दिल को जीत करके इतना बड़ा यज्ञ चला दिया, इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा दिया। आज जो हजारों बाबा के बच्चे बने, हजारों सेवा केंद्र खुले हैं, जो इतने निर्विघ्न रीति से चल रहे हैं, उसका यही कारण उनकी बड़ों की बहुत सरल चित नेचर, सबको सम्मान देने की नेचर, सबकी सुनने की नेचर, किसी की कट नहीं करना, अगर गलत है तो भी कट नहीं करना। अब यहां पर आप अटक सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति गलत है और वो गलत व्यक्ति आकर के कोई बात अपनी सिद्ध कर रहा है, नहीं यही होना चाहिए, आप कट नहीं करेंगे। परमात्मा हम सब बच्चों को एक बात सिखाते हैं, तुरंत कट नहीं करना, उसी समय उसकी बात को कट नहीं करना, क्योंकि वो अपने को समझदार समझ करके बिल्कुल राइट हूं इस भावना से आपके सामने आता है, और वो जो कह रहा है उसके अंदर फोर्स है कहने का कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसलिए तुरंत सुनो। हमारी दादियां पता क्या कहती थी, आपकी राय तो बहुत अच्छी है, आपने जो कहा है इस पर हम विचार करेंगे, आपस में विचार करके फिर बताएंगे। ये नहीं कहा तेरी राय गलत है, इसे नुकसान हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, उसकी बात को कभी कट नहीं किया, उसकी बात को उसी समय रिस्पेक्ट दे करके सुना, और सुन करके कहा अच्छा इस पर विचार करेंगे, इस पर हम राय करेंगे, सबकी जब सहमति होगी तब ये प्रैक्टिकल कर लेंगे, तब तक के लिए धैर्य से आपने कही हमने सुनी। कई तो सुनते ही नहीं है, और सुनोगे नहीं तो क्या होगा, वो सामने वाला व्यक्ति दूसरी बार अपने विचार देगा ही नहीं। सेवाओं की जो वृद्धि हुई, जो इस विद्यालय का विस्तार हुआ, जो अनेक कार्यक्रम बनाए गए, बने हैं पूरे विश्व के लिए, बन रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उसका मूल कारण अगर आप गहराई से देखेंगे, उन्होंने किसी के विचारों को, किसी की राय को बड़ों ने कट नहीं किया, गलत होते हुए भी कट नहीं किया, उस समय नहीं कट किया, और जब उसका मूड थोड़ा हल्का हो गया, लाइट हो गया, फिर बता भैया ये बात जो तुमने कही ना, इसमें ये नुकसान है, उसी समय नहीं कट किया, उस समय उसका फोर्स होता है। तो आप अपने परिवार में, संबंधों में मित्रता भाव रखने के लिए किसी की भावनाओं को, किसी की बातों को, किसी की राय को तुरंत कट नहीं करना। आया है आपको अपनी बात कह रहा है, जिद से कह रहा है, ठीक है तूने कहा, तूने दिया, समझा मैंने, समय पर हम बात करेंगे, इससे संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो संबंधों को सुधारने के लिए, संबंधों में मित्रता भाव कायम रखने के लिए, संबंध केवल लौकिक ही नहीं होते, मां बाप बच्चे परिवार, बहुत सारे संबंध होते हैं, बिजनेस में भी ग्राहक और बिजनेस का संबंध होता है, एक लेखक है उसकी जो पुस्तकें लिखी जाती है उससे पढ़ने वालों का संबंध हो जाता है, धार्मिक रूप में एक गुरु है उसके शिष्य हैं, गुरु की भावनाओं को आदर करने वाला वो भी एक संबंधी बन जाता है। संबंधों का बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, और हम सब संबंधों के आधार से संसार में रह रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, अगर संबंध ही नहीं होते तो सहयोग कैसे मिलता। संबंध जरूरी है, लेकिन संबंध कहीं बंधन न बन जाए इस पर ध्यान देना, नहीं तो वो दुख देंगे, परेशान करेंगे, कहते हैं क्या करूं मेरे पति का मुझे बंधन है, वो मुझे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देता, मुझे पवित्र जीवन जीने नहीं देता, किसी को आराम से रहने नहीं देता, ये संबंध कैसे है। ये कलयुग के दुखदायी संबंध है, विकारों के कारण संबंध है, स्वार्थ के कारण संबंध है, इसलिए दुख है संबंधों में, इसलिए मित्रता भाव नहीं रहा, अपनेपन की भावना नहीं रही। हम सब बाबा के बच्चों को परमात्मा ने ये सिखाया है, समझाया है कि सबके प्रति समान भाव रखो, शुभ भाव रखो, कल्याण का भाव रखो, और सबको सहयोग देने की भावना रखो। कभी भी कोई भी आत्मा आपके समीप आई, अगर आध्यात्मिक मार्ग में अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां चाहती है तो आप उसको सहयोग दो, आप उसको कट नहीं करो, उसको बंधन नहीं बनाओ, उसको आगे बढ़ाओ, अच्छे मार्ग में आगे बढ़ाना। कोई गलत कोई करने जा रहा है तो वहां पर रोकना होता है, और रोकना भी जबरदस्ती नहीं होता। अगर वो गलत करेगा तो उसके साथ उसके कर्म है, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। आपका जो फर्ज है आप घाइट कर सकते हो। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमारे बड़ों ने, हमारे बाबा ने हम सबको गाइड किया है, अधिकार नहीं रखा। कितनी बार कहा है बच्चे क्रोध नहीं करना, गुस्से में बोलना नहीं, और फिर भी कोई न कोई के मुख से कुछ ऐसे वचन निकल जाते। बाबा कभी उनके ऊपर फिर गुस्सा नहीं करता। बाबा ने कहा एक कर्मों की गति है, जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा जो बोएगा वही काटेगा। अगर आप गलत करोगे, आपके बच्चे गलत करेंगे, आपके संबंधी गलत करेंगे, तो जो करेंगे वो पाएंगे। आपका जो फर्ज है वो पूरा करो, आप सही रास्ता दिखाओ, सही रास्ते पर चलो। जैसा करोगे वैसा दूसरे सीख जाएंगे। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके परिणाम को, उसकी भोगना को वो भोगेगा। हम सब बहुत समझ से इस आध्यात्मिक ज्ञान को यथार्थ समझ करके अगर अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारे संबंध बड़े मधुर हो जाते हैं। एक दूसरे को देख करके नयन ठहर जाए, बाबा कहते शीतल हो जाए, जलन न पैदा हो जाए। देखते ही ये कहां से आ गया, ये कैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कईयों की वृत्तियों में किसी की कोई बात बैठ जाती है ना, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण ये बन जाता है ये व्यक्ति ठीक नहीं है। 10 साल पहले उसने मेरे साथ कुछ किया था और वो बदल गया, उसको भूल भी गया, और मैंने उस बात को अंदर लेकर के 10 साल के बाद वो मिला और मेरे अंदर वही दृष्टि मर्ज हो गया, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था। हमारे मधुर संबंध हो सकते हैं क्या? इसलिए बाबा हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कोई की बातों को गांठ बांध करके नहीं रखो। बातें बातें हैं, बीत जाती हैं, तुम अपनी स्थिति को अच्छा बना के रखो। बीती का चिंतन नहीं करो, आने वाले कल की चिंता नहीं करो, वर्तमान को अच्छे से अच्छा बनाओ। वर्तमान हमारा अच्छा है तो वर्तमान के आधार से जो कल होने वाला है, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी से आप पूछ लो कल क्या होगा, उसके मुख से ये निकलेगा कल बहुत अच्छा होगा। क्यों? वर्तमान मेरा अच्छा है। वर्तमान का दर्पण कल है, जो आज हम करेंगे उसके परिणाम स्वरूप हमारा कल होने वाला है। अगर हमने आज को अच्छा बनाया है तो कल हमारा अच्छा निश्चित है, इसलिए कोई को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और बीती को हम चितमन नहीं लाते, चित में नहीं रखते, फुल स्टॉप। जो बीत गया वो बीत गया, उसको क्यों सोचे हम। इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए केवल ध्यान देना कि हमारे संकल्प, हमारा चिंतन बड़ा शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, सबके प्रति सकारात्मक। कहते हैं कम सोचो, धैर्यवत होकर के सोचो, सोचो समझो फिर करो, सोच समझ करके करो, सोच समझ करके बोलो, तौल करके बोलो, संबंध अच्छे हो जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, पहले चिंतन धारा पर ध्यान, फिर बोल पर फुल कंट्रोल। ऐसे नहीं कह सकते निकल गया, मैं मालिक हूं, जो बोलना चाहूं वही बोलूं, जब चुप रहना चाहूं चुप, बोलेंगे नहीं कितना भी कोई बुलाए। और करनी पड़ तो सदा ही ध्यान है। ऐसे नहीं कह सकते चाहता नहीं था, हो गया, हाँ चल गया, गुस्से आ गया, इतना तो अपने पर कंट्रोल करो। लेकिन ये कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है तो आप आत्मा राजा नहीं बने हैं। राजयोग का यही अर्थ हम बताते हैं, राजयोग माना जो अपनी इंद्रियों का राजा है। अगर मैंने राजयोग सीखा है, राजयोग हम सीख लेंगे तो हम अपने आप पर राज्य करना सीख जाएंगे, और अपने पर जो राज्य करता है उसका सारा संसार अपना बन जाता है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं, हम कोई के नहीं है, कोई हमारा नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हमारे विद्यालय का पहला स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हम कहें ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये बदल जाए, भगवान कहता है कभी नहीं बदलेगा, पहले तू बदल जा। ये ध्यान देना, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन हम कभी भी अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए कहावत है, जब एक अंगुली इधर की जाती है तो बाकी सब इधर आती है, अपनी तरफ आती है। जब दूसरे को बदलने के लिए इशारा करो ये बदले, तो एक रूप में ये बदलेगा तो तीन रूप में मुझे बदलना होगा। हम बदलेंगे तो सब बदल जाएंगे। इसलिए कोई भी बात है, किसी भी बात में है, हमारी दादी जी एक बहुत अच्छा कहती थी, हार मान लो हारमनी हो जाएगी, हारमनी हो जाएगी, संगठन एक हो जाएगा, सब एक हो जाओगे। लेकिन नहीं नहीं, मैं राइट हूं ये रांग है, मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं बड़ा हूं ये छोटा है, वहां क्या होगा, टकराव हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी, संबंध बिखर जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई बात आती थी, हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया, एक सेकंड लगता है, सॉरी कर लो, सॉरी सॉरी करते ही सब समस्याएं खत्म हो जाती। नहीं, सॉरी करने में पता नहीं अभिमान क्या आता है, इतना आता है मैं राइट हूं ना, मैं सॉरी क्यों करूं, ये गलत है जिसको सॉरी करना चाहिए। अब वो गलती महसूस ही नहीं कर रहा जिसको आप कह रहे हो गलत है। अगर हमने सॉरी कर लिया तो उसको अपनी गलती महसूस होगी, आज नहीं तो कल वो महसूस करेगा मैं गलत था, मुझे सॉरी करना चाहिए। लेकिन अभिमान एक ऐसी चीज है जो इंसान को झुकने नहीं देता। इसलिए हमें बड़ों ने सिखाया, झुक झुक, मर मर, सीख सीख। अगर संगठन को एक बना के रखना है तो झुकना सीखो, सहन करना सीखो। कहते हैं जहां रहना है वहां सहना है। अगर हम सहन कर लेंगे तो सहनशाह बन जाएंगे, हमारे सब मित्र बन जाएंगे। तो आप सभी बाबा के घर से कुछ ऐसे मंत्र लेके जाना, आए हो इतनी दूर से, कि आपका परिवार एक आदर्श परिवार, आदर्श प्रवृत्ति बन जाए, घर एक स्वर्ग बन जाए, एक घर मंदिर बन जाए, आपको देख करके, आपके परिवारों को देख के लगे कि इनके घर में कभी तू मैं नहीं होता, टकराव पैदा नहीं होता, सब एक दूसरे को कितना सम्मान देते हैं, कितना सत्कार से बात करते हैं, कितना आपस में मिलके चलते हैं, एक ने कहा दूसरे ने माना, इससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। तो आप ऐसे बन सकते हो ना, ज्ञानी वो है जो एक ने कहा दूसरे ने माना, हम कहें और दूसरा हमारी बात को कट कर दे, उसको ज्ञानी क्या कहेंगे। इसलिए कोई किसी की बात को कट न करके, एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट देते हुए, सम्मान देते हुए आप चलेंगे तो आपके साथ सब संबंध मित्रवत रहेंगे, किसी पर बंधन नहीं। हरेक का हिसाब किताब अपना है, हरेक के संस्कार अपने हैं। हमारा अगर कुछ फर्ज है तो शुभ भावना रखना, उसको सही दिशा दिखाना, गाइड करना, बाकी कोई फर्ज नहीं। ओके, ओम शांति।